الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء خالف اليهود صوموا قبله بعد أو بعده يوما رواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں اور مکسلر کے ذریعے سے سننے والے سارے میرے بھائیو اور سننے والی میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بہت اچھا موقع ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا محرم کے روزے کے متعلق عاشورہ کا روزہ تو میں نے سوچا کہ چلو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو بیان کر دیا جائے محرم کے روزے کے بارے میں موقع بھی اچھا ہے انشاءاللہ قریباً 17 روزہ رکھنا ہے تو فرائیڈے اور سٹرڈے یا سٹرڈے سنڈے روزہ رکھ لیں دو روزے رکھ لیں تو محرم کے روزے کے بارے میں ویسے تو محرم کا مہینہ اسلامکلی سب سے پہلا مہینہ ہے اسلامکلی دا فرسٹ منتھ دا منتھ از کال محرم محرم الحرام اینڈ اللہ آلسو مینشن کلیئرلی ان دا قرآن دا منتھ آف اللہ شہر اللہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا محرم کو ہی مینشن دا منتھ آف محرم یعنی منتھ آف اللہ اسلامکلی فرسٹ منتھ ہے اور ساتھ ساتھ میں سال میں 12 مہینے ہیں اس میں 4 مہینے کا بڑا احترام ہے محرم رجب ذی قعدہ اور ذی الحجہ ابن ماجہ کی روایت ہے صفحہ نمبر 125 پر اس کو ذکر کیا راوی اس کے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو فاس ان دا منتھ آف حرم اشحر الحرم میننگ محرم رجب ذی قعدہ ذی الحجہ اسی لیے مسلم شریف میں ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد افضل ترین سب سے زیادہ افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے اور افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے یہ روایت امام مسلم نے نقل کی ہے, دا بیسٹ روزہ فاسٹ آفٹر دا منتھ آف رمضان از اے فاسٹ آف محرم, اینڈ دا بیسٹ صلاح آفٹر کمپلسری ایکٹ کمپلسری صلاح از اے صلاح تہجد صلاح. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں آپ کے پاس, حضرت علی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی نے سوال کیا کہ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزہ رکھنے کا حکم آپ مجھے فرماتے ہیں. He asked نبی صلی اللہ علیہ وسلم which fast I must keep after the month of Ramadan. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تجھے رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا ہے تو محرم کے مہینے کا روزہ رکھو. Clearly mentioned by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم you can fast after Ramadan if you want to fast, fast in the month of Ramadan. کیوں؟ فرمایا اس مہینے محرم میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ کو قبول کیا ہے اور دوسری قوم کی توبہ کو قبول کرے گا. امام منذری نریٹ دا سریس ان اس کتاب, امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں سال کی بگننگ اسلامی کی اعتبار سے محرم کے مہینے سے ہوتی ہے, اس لیے اس مہینے میں روزہ رکھنا یہ پورے سال کی برکت کا باعث بنے گا. پورے سال میں اللہ کہ جس کی ابتدا اچھی اس کی انتہا اچھی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا. امام نووی رحمت اللہ علیہ شارح مسلم شریف کمنٹیٹر آف مسلم ہی مینشن کہ رمضان کے روزے کے بعد آفٹر دا فاسٹنگ آف رمضان سب سے زیادہ فضیلت اشہر الحرم یعنی وہ چار مبارک مہینے, چار بہت ہی زیادہ برکت والے مہینے ہیں, وہ محرم رجب اور ذی قعدہ ذی الحجہ. اس چار مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. پھر ان چار مہینے میں بھی افضل ترین اگر کوئی ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے. گویا بارہ مہینے میں چار مہینے, چار مہینے میں بھی محرم کا مہینہ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور ماہ محرم کا پہلا عشرہ یہ گویا کہ پورے مہینے کے روزے کا محل ہے کہ آدمی شروع میں روزہ رکھ لے تو پورے مہینے کا اس کو ثواب مل جائے گا. اسی لیے مجمع الزوائد میں جلد نمبر 4 صفحہ 194 میں روایت نقل کی ہے. امام منذری آلسو نریٹڈ دس حدیث ان اس کتاب ان ترغیب, آلسو امام احمد بن حنبل مسند احمد کی شرح میں بھی نقل کیا ہے صفحہ 170 پر. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محرم کے مہینے کا ایک روزہ رکھا اس کے بدلے, ایک دین کے بدلے اللہ اس کو 30 روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ہوئے وفاس ان دا منتھ آف رمضان ان منتھ آف محرم جسٹ ون فاسٹ ہی ول گیٹ دا 30 فاسٹ ریوارڈ. ویسے ایک روزے کا ثواب 10 ہے لیکن ابن عباس فرماتے ہیں 30 روزے کا ثواب ہے. اسی لیے ماہ محرم میں ان دا منتھ آف محرم میں 3 روزے رکھنا, 3 روزے رکھ لیں कितना सवाब है। इत्तेहाब सादा में इस रिवायत को नकल किया, मजमू जवाइद में भी और शरह मुस्नद अहमद में और तबरानी ने भी इस रिवायत को नकल किया। नरेत बाय हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो मुहर्रम के महीने में 3 रोजे रख ले, और दिन भी बड़े अच्छे हैं, कब आ रहा है 10 मुहर्रम सैटरडे, और उससे पहले 2 दिन जुमेरात जुम्मा और सैटरडे, रिवायत में है जुमेरात जुमा और सैटरडे, उसको 60 ईयर्स की इबादत का सवाब मिलेगा, 7 साल की। ये बात मजमू जवाइद में जिल्द नंबर 4 सफा 193 पर इस बात को नकल किया। शरह मुस्नद अहमद में भी है, तबरानी में भी, अनस बिन मालिक इसके रावी है, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मालूम होता है इसकी फजाइल। वी आर गोइंग टू फास्ट फॉर 2 डेज, आदर फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। द बेस्ट इसी महीने में 3 रोजे रख ले। वैसे तो हुक्म आगे मैं बयान करूंगा 2 रोजे का है, लेकिन अगर एक और रोजा रख लिया जाए, अल्लाह के नबी की फरमान से मालूम होता है कि उसको शी विल गेट द 60 ईयर्स रिवॉर्ड। चूंकि इस महीने की निस्बत अल्लाह की तरफ है, क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अफजलुस सयामी द बेस्ट रोजा बाद रमजान आफ्टर रमजान शहरुल्लाह अल मुहर्रम द मंथ ऑफ अल्लाह अल मुहर्रम, मालूम होता है ये मंथ ऑफ अल्लाह, इसको शहरुल्लाह कहा गया। इस महीने में रोजे दूसरे रोजों से बेहतर है सिवाय रमजान के, बल्कि बास फरमाते हैं शाबान के रोजे से भी अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में भी कसरत से रोजा रखते थे, आप सल्लम की आदत मुबारक थी। एक रिवायत इत्तेहाब सादा में नकल की है जिल्द नंबर 4 सफा 256 के, इत्तेहाब सादा, उसके रावी भी अनस बिन मालिक है, फरमाते हैं कि 60 ईयर्स तो है ही, दूसरी रिवायत में 700 साल की इबादत का सवाब है उसको, जुमेरात जुमा और शनिचर को, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रख ले, ही और शी विल गेट 60 ईयर्स। अनदर रिवायत 700 साल, 700 ईयर्स इबादत रिवॉर्ड। सुभानअल्लाह, अल्लाह को रोजा बहुत पसंद है, इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर हजरत हसन बसरी इस माह में रोजा बहुत कसरत से रखते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ना फरमाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू टेल अस, हम कहते थे कि रोजा रखो आशुरा का, जब रमजान का रोजा फर्ज हो गया तो फिर आपने फरमाया तुम्हारी मर्जी है रखो ना रखो, यानी फर्ज नहीं। पहले मुहर्रम का रोजा जरूरी था, बाद में रमजान के रोजे का हुक्म आया तो फिर ये फर्ज खत्म हो गया, वो रमजान को बाकी रखा, फिर अल्लाह के हबीब कहते हैं इसका रोजा रखो। इब्न अब्बास से मरवी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहूदियों को आशुरा का रोजा रखते हुए देखा, यहूदियों को, बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो देम दे वर फास्टिंग इन मदीना मुनव्वरा, द यहूदी वाज फास्टिंग ऑन द डे ऑफ आशुरा वन डे, तो आपने उस दिन के मुतालिक पूछा कि वाई डू यू फास्ट ऑन द 10th ऑफ मुहर्रम, सो उन्होंने कहा यह बहुत खैर का दिन है, दिस इज अ ब्यूटिफुल एंड गुड लक डे, वेरी नाइस डे। क्यों? इसी दिन हमारे बनी इसराइल को, उनके जनरेशन को जो पीछे, उनको इसी दिन अल्लाह पाक ने दुश्मनों से निजात दी थी। और वो क्या है? फिरौन और फिरौन की कौम से उनको निजात मिली थी और वो बच गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्रन रोजा रखा था, टू थैंक अल्लाह ताला ही फास्ट। सो वी ऑल्सो फास्टिंग ऑन द फॉलोइंग ऑफ अवर मैसेंजर मूसा अलैहिस्सलाम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हम तो तुमसे ज्यादा मुस्तहिक है, वी हैव मोर राइट, वी हैव मोर राइट टू फास्ट ऑन दिस डे, हमें तो और ज्यादा मुस्तहिक है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा और लोगों को रोजा रखने का हुक्म दिया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आशूरा को यहूद ईद का दिन समझते हैं। डे ऑफ आशूरा फॉर देम इज लाइक ए डे ऑफ ईद फॉर देम, डे ऑफ ईद फॉर देम। तो आपने फरमाया, तुम इस दिन रोजा रखो उसकी मुखालिफत में। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सिर्फ एक दिन का रोजा न रखो बल्कि दो दिन का रोजा रखो, 9-10 और 10-11 बुखारी में है, उन लोगों की मुखालफत में। यहां एक बात समझनी है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के मुखालिफ होते थे उनकी मुखालिफत इबादत में भी करते थे, न कि दुनियावी मामले में, दुनियावी मामले में तो करते ही थे लेकिन इबादत में भी। और आज लोग देखो, यूरोप और जो मगरिब है उसकी मुखालिफत कौन करता है? लोग उसका फॉलो करते हैं हर चीज में, ड्रेस में देखो उसका फॉलो, खाने में देखो उसका फॉलो, पीने में देखो, खड़े खड़े पीना, खड़े खड़े खाना, लेफ्ट हैंड से खाना और न मालूम कैसे कैसे कपड़े पहनना, ये सब उनकी मुखालिफत है, मुखालिफत नहीं है, इनकी फेवर है। अल्लाह के हबीब ने तो इबादत में भी उनकी मुखालिफ का हुक्म दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, जो आदमी जिस कौम का रिजेंबलेंस और मुशाबियत इख्तियार करेगा कयामत के दिन उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। जो जिस कौम का फॉलो करेगा उस कौम के साथ उसका हशर होगा। दे विल बी रिजरेक्ट ऑन द डे ऑफ कयामत विद दोज हु दे विल फॉलो। अगर क्रिश्चियन का फॉलो है तो क्रिश्चियन के साथ, अगर यहूद का फॉलो है तो यहूद के साथ, सिखों का फॉलो है तो उनके साथ, हिंदू का फॉलो है तो हिंदू के साथ, जिस किस्म के लोगों का फॉलो करेंगे उन्हीं के साथ कयामत के दिन उठाया जाएगा। हालांकि एक छोटी सी चीज में फॉलो करने की वजह से अल्लाह का अजाब कितना खतरनाक आता है कि अंदाजा नहीं लगा सकते। किताबों में एक वाकया लिखा है, एक बुजुर्ग अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे ऑन द वे, उस जमाने में सफेद गाय रास्ते में घास खा रही है। इस बुजुर्ग जो पान खाने वाले, ये कहकर पान खाते खाते उस पर गाय, सफेद गाय के ऊपर थूक दिया, ये कहकर कि आज तो होली का दिन है, सब एक दूसरे को कलरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे पर रंग रोगन डाल रहे हैं, तुझ पर डालने वाला कोई नहीं, लाओ मैं तुझे अपने पान के लाल थूक के साथ कलर कर देता हूं। उस बुजुर्ग का जब इंतकाल हुआ तो ख्वाब में किसी ने देखा तो फरमाया, आज 30 साल हो गए मुझे एक सवाल के जवाब देने से। अल्लाह ने पूछा कि तुमने اسلام کے خلاف دوسرے کے ساتھ ریزمبلن کیوں اختیار کیا، کیوں اس گائے کے اوپر اس طرح بول کے ڈالا کہ یہ قوم کر رہی تو میں بھی تم پر کر رہا ہوں؟ اس کا جواب دو، میں 30 سال سے پریشان ہوں، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہوتا ہے، اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیز پر پکڑ لیتا ہے. آج سے کچھ سال پہلے مکہ المکرمہ میں ایک آدمی کو دفن کیا گیا، مسلمان، وہاں کے قبرستان میں. اور پھر کچھ عرصوں کے بعد، وہ چونکہ قبر میں دوسری باڈی کو دفن کرتے ہیں تو کھودنے والے کو پتا تھا، لیکن بجائے وہاں اس آدمی کے کسی عورت کی لاش نکلی اس قبر سے، بجائے مرد کے کسی عورت کی لاش نکلی، تو پھر یہ مشہور ہو گیا، یہ تو سفید عورت ہے، یعنی گوری عورت ہے، یہاں کہاں دفن ہوئی؟ گوڑے لوگ تو ہے نہیں مکہ میں، انگریز لوگ، وہ لڑکی یہاں کیسے؟ تو پھر بہت شور شار ہوا، تو پتا چلا کہ دوسری کنٹری میں، بھول گیا نام، وہ اس کتاب میں لکھا تھا، وہاں پر پتا چلا کہ یہ تو ہماری کنٹری کی عورت ہے جس کو ہم نے یہاں دفن کیا تھا، اس کنٹری میں وہاں دفن کیا، تو یہاں کیسے نکلی؟ جا کر انہوں نے کوشش کی اس کنٹری میں اس کی قبر کھود کر دیکھنے کی، تو وہ مرد جو مکہ میں دفن کیا تھا، جو مکہ المکرمہ میں دفن کیا تھا، وہ وہاں نکلا، اور وہ عورت جو وہاں دفن کی وہ مکہ مکرمہ میں نکلی. پوچھا ایسے کیسے ہو گیا؟ اس لڑکی کے رشتہ دار اور ماں باپ وغیرہ سے پوچھا کیا، کہا میری بیٹی اسلام کی طہارت کو بہت پسند کرتی تھی، کہ اسلام میں وضو اور غسل ہے، طہارت کے لیے زبردست چیز ہے، شاید اس نے اندر اندر کلمہ بھی پڑھ لیا ہو. پھر اس آدمی کی فیملی سے پوچھا یہ کیا ہوا، کہا یہ آدمی کہا کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنے کے بعد غسل کرنے سے بہت کتراتا تھا، اور کہتا تھا یہ کیسا اسلام ہے، جب جاؤ بیوی کے پاس تو غسل کرو غسل کرو غسل کرو، گویا وہ اسلام کے ایک حکم جو غسل ہے جس کا ذکر قرآن میں، اس سے نفرت کرتا تھا، تو اس کو یہاں سے وہاں نکالا اس مذہب میں، چونکہ اس مذہب کو پسند کرتا تھا کہ وہ غیر لوگ ہیں، وہ غسل کرے نہ کرے، کیا نہ کیا، اور وہ غسل کو پسند کرتی تھی، اسلام کو، اسلام کے مذہب کو، اس کو یہاں معلوم ہوتا ہے، دنیا ہی سے پتا چلا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی قوم کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا. جیسے بے نمازی کے بارے میں حدیث میں ہے، ما قارون فرعون وحامان، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شیطان کے ساتھ ہوگا، جو نیک ہوگا وہ صحابہ کے ساتھ ہوگا، اولیاء کے ساتھ ہوگا، نیک اور صالحین کے ساتھ ہوگا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آئندہ سال، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہر سال روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، پھر انتقال سے پہلے آپ نے فرمایا میں آئندہ سال 2 روزے رکھوں گا ان کی مخالفت میں، یہ 1 رکھتے ہم 2 رکھیں گے اسلام میں ان کی مخالفت کر. لیکن آئندہ سال آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن آپ کا حکم تھا، اس لیے بہتر یہی ہے، اگر کسی نے 1 رکھ لے ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے 2 روزے رکھ لیں، 9-10 یا 10-11. اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کاتب وحی ہے، جن کے بارے میں حدیث میں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، سبحان اللہ، ہادی مہدیہ، انہوں نے مدینہ میں آ کر ایک مرتبہ جمعہ عاشورہ 10 محرم کو جمعہ تھا، ہمارے یہاں 9 محرم کو اس وقت، خطبہ دیتے ہوئے حضرت معاویہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے خطبہ دیا، فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آج عاشورہ کا دن ہے، اس دن کے روزہ اللہ پاک نے فرض نہیں کیا لیکن میں روزے سے ہوں، فرض لیکن میں جو پسند کرے آج کے دن روزہ رکھے، یعنی اللہ کے حبیب روزے کے ساتھ تھے، فرض تو نہیں تھا، لیکن اللہ منوی فرماتے ہیں کہ سنت ہے، سنت ہے. یہ بات امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینشن تو حارث بن ہشام کہ ٹمورو از اے ڈے آف عاشورا، فاسٹ یور سیلف اینڈ ٹیل یور فیملی اینڈ ریلیٹوز ٹو فاسٹ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حارث بن ہشام کہ یو مس اناؤنس امنگز دا فیملی دیٹ کال عاشورا کا دین ہے، خود بھی روزہ رکھے اور اپنی فیملی اور گھر وال کو بھی روزہ رکھا ہے. اسی لیے علامہ عینی بخاری کے شرح کرنے والے فرماتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ عاشورا کا روزہ رکھنا سنت ہے، سنت. شب برات کا مستحب ہے، شب برات 15 شعبان از مستحب، عاشورا از سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاس ان صحابہ کرام. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورہ کے علاوہ کسی اور دین کا جس پر اس کو فضیلت حاصل ہو اتنا اہتمام کرتے نہیں دیکھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ایمفسائز اینڈ میک اہتمام اینڈ پابندی آن دا روزہ آف عاشورہ، آپ خاص طور پر فرماتے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہی واز ناٹ مسنگ فور تھنگس آلویز، کبھی نہیں چھوڑتے، ہمیشہ ہی یوز ٹو پرفارم دیٹ، ہمیشہ آلویز ہی یوز ٹو ڈو دیٹ. نمبر ون، عاشورہ کا روزہ، دیٹ واز ہیبت آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عادت تھی عاشورہ کا روزہ. نمبر دو، فرسٹ 10 ڈیز آف ذیل حجہ، عشر ذیل حجہ کا روزہ، عشر ذیل حجہ کرو، اور ہر مہینے کے 3 روزے، 3 فاسٹ آف ایوری منتھ، 13 14 اینڈ 15 آن ٹو سنت آف فجر صلاح، یوز ٹو ڈو پابندی. چار چیزیں، عاشورہ کا روزہ، فرسٹ 10 ڈیز آف ذیل حجہ فاسٹنگ، ہر مہینے کے 3 روزے، اور فجر کی 2 سنت، اس کی پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں ہے عاشورہ کے روزے سے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اسی لیے علامہ عینی فرماتے ہیں عاشورہ کا روزہ صوم الدہر ہے، اور بعضوں نے لکھا ہے، اللہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 11 پیج نمبر 118 میں لکھا ہے عاشورہ کا روزہ آخرت کے سالوں کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر، 1000 سال کے برابر، آخرت کے اعتبار سے 1000 سال، اس کو ضرور رکھ لیں. عاشورہ محرم کی بڑے فضائل ہے، بڑے فضائل. عثمان ابن مطر رحمت اللہ علیہ اس روایت مینشن ان دا کتاب مجموع الزوائد، حدیث کتاب، आशुरा के दिन जूदी पहाड़ पर ये मजमू जवाइद की रवायत है जो सफा पेज नंबर 191 पर लिखी है। द माउंट ऑफ जूदी, नबी नूह अलैहिस्सलाम की बोट शिप वो स्टॉप हुई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने और उनके साथी जितने थे 70 जो भी हो उन तमाम ने बतौर शुक्रिया के तौर पर उन्होंने रोजा रखा 10 मुहर्रम को रोके। यहां तक के रिवायत में लिखा है वहशी जानवरों ने भी, जानवर भी बहुत में थे ना, बहुत सारे जोड़े सब लिए थे और उसी आशुरा के दिन बनी इसराइल के लिए समंदर फता, ये बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम वो नूह अलैहिस्सलाम जानवर भी रोजा रखते हैं नहीं खाना खाए और बनी इसराइल के लिए समंदर फता और फिरौन और उसकी कौम से बच गए, फिरौन और उसकी कौम हलाक हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम आशुरा के दिन बच गई। आशुरा के दिन तौबा अल्लाह ने कबूल की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, यूनुस अलैहिस्सलाम की और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए। अल्लामा आइनी शरह बुखारी में, बुखारी की शरह में अल्लामा आइनी कुछ 10 बातें लिखते हैं, 10 इनाम जो अल्लाह पाक ने 10 अंबिया अलैहिस्सलाम को नवाजा, 10 नबी को मिली हो। नंबर 1 जो अभी सुनाया बुखारी शरीफ में भी है, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर फटा और वो निकल गए, रास्ता बन गया, फिर फिरौन और उसकी कौम तबाह बर्बाद हो गई। नंबर 2 जूदी बहार पर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बोट स्टॉप हुई। नंबर 3 यूनुस अलैहिस्सलाम वाज आउट फ्रॉम द फिश ऑन दैट डे, ऑन द डे ऑफ आशुरा अल्लाह हैज एक्सेप्टेड द दुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बीन टेकन आउट फ्रॉम द वेल, कुएं से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला और ईसा अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए और इसी दिन अल्लाह ने उनको आसमान पर जिंदा उठा लिया। अल्लाह एक्सेप्टेड द दुआ ऑफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आल्सो बोर्न ऑन द 10 आशुरा 10 डे ऑफ मुहर्रम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई चली गई थी ना, वापस आ गई इसी दिन में और हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगले पिछले सारे गुनाहों का ऐलान। और बाज़ों ने कहा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसी रात में आसमान पर उठाए गए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली इसी दिन में। ये बात उम्दतुल कारी शरह बुखारी में जिल्द नंबर 11 पेज नंबर 118 पर इस बात को नकल किया है। मालूम होता है एक मखसूस दीन है, बहुत ही मखसूस दीन। हदीस में आता है अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला की रिवायत, इमाम बैहकी अपनी किताब शौबुल ईमान में नकल फरमाते हैं जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 366 पर और मिश्कात में भी इस रिवायत को है नकल किया और मजमऊ ज़वाइद में भी इस रिवायत को नकल किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने आशुरा के दिन अपने अहलो अयाल पर, अपने बीवी बच्चों पर वुसअत की, अच्छा खाना पकाया, उनको खुश किया तो अल्लाह पाक उसकी वजह से पूरा साल उसके घर में वसात कर देंगे, बरकत देंगे। अब तो बिरयानी पकेगी, गजीब और चिकन पकेगा। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जिसने आशुरा के दिन अहलो आयाल पर तवस्सु किया, वसात की, यू नो मेड देम हैप्पी, कुक सम नाइस फूड इफ्तार टाइम, सुभान अल्लाह, अल्लाह पूरा साल उस घर के अंदर में वसअत अता फरमाएंगे। ये रिवायत बहुत सारे साहबा से, हजरत जाबिर से, अब्दुल्ला बिन मसूद से, अबू सईद खुदरी से, अबू हुरेरा से, मुतअद्दद रिवायत में आशुरा के दिन अहलो आयाल पर तवस्सु की ये बरकत बताई गई, जिसकी वजह से पूरा साल अल्लाह घर में बरकत देता है। इवन दो रिवायात आ वीक, ज़ईफ, लेकिन बहुत सारी रिवायत मिल जाती है तो यह हदीस हसन और अमल के दर्जे में आ जाती है, क्योंकि उसके नरेटर बहुत सारे हैं बयान करने वाले। तो उस दिन हस्बे इस्तेताअत, लोन नहीं लेना खाना पकाने के लिए, हस्बे इस्तेताअत आदमी के पास जितना पैसा हो बेहतर खाना बनाएं घर वालों के लिए, अहबाब के लिए, रोफका के लिए, कुछ रिश्तेदार के लिए भी बना दे, दे दे। उस दिन रोजा भी है, तवस्सु भी है, इसलिए इफ्तारी और खाने में सहूलत है, न कि दोपहर में रोजा न रखे और खाना खाता रहे। दोनों पर अमल करना हो तो रोजा भी रख ले, फिर इफ्तारी में बेहतरीन खाना भी ताकत के मुताबिक हो, हस्ब इस्तेताअत पकाएं और खाएं। ये दो ही काम हैं, रोजा और तवस्सु, यानी अहल आयाल के लिए अच्छा पकाना। उसके अलावा जितने भी आजकल लोग हैं काम करते हैं, ये सब बिदअत है, रस्म रिवाज है, जिससे बचना जरूरी है। बस ये दो काम है, याद रखो, टू फास्ट ऑन दैट डे, सेकंड थिंग टू कुक नाइस फूड फॉर द फैमिली फॉर रिलेटिव। अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब भेजा था पानी का, तमाम इंसानों को गर्क कर दिया था, सिर्फ वो बचे थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ईमान की बुनियाद, ईमान लाए थे, यानी ईमान लाए थे, वही कश्ती में बचे थे और वो हजरत की कश्ती में सवार थे। और ये कश्ती से दुनिया के अंदर में जमीन पर आशुरा के दिन में उतरे थे और उन पर खाने पीने और जमीन की अल्लाह पाक ने वसअत फरमा दी, और उसी दिन तवस्सु का हुक्म था। इसीलिए हर साल अगर किसी ने अच्छा पका लिया तो सुभान अल्लाह, अल्लाह उसके घर में बरकत दे देता है। यानी कश्ती पर जो 6 महीने तक घूमती रही, द बोट वो सेलिंग फॉर 6 मंथ्स, तो कहां खाने पीने की फरावानी और वसत हो सकती थी। जब कश्ती से उतरे जमीन पर तो अल्लाह ने उनके लिए खाने की बरकत अता फरमा दी उसी दिन में। अल्लामा मनावी ने लिखा है, अहले इल्म ने इसको मुजर्रब कहा है, तजुर्बा से साबित माना है कि आप पका के देखो फिर साल में बरकत भी देखो, ये मुजर्रब है, एक्सपीरियंस है। इसीलिए फरमाते हैं वज़ालिका मुजर्रबुन लिल बरकति व तवस्सुआति, ये अमल मुजर्रब है बरकत वाला वुसअत के लिए। इसीलिए हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने इस तजुर्बे में सही पाया, आई डिड आई गॉट एक्सपीरियंस आई हैव सीन द बरका फॉर फुल ईयर इन माई हाउस। इब्ने उयैना ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ हदीस, उन्होंने कहा मैंने 50 साल तक आशुरा के दिन में अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा खाना बनाया एंड आई हैवन सीन द एक्सपीरियंस फॉर 50 ईयर्स ऑफ बरका इन माई हाउस। 50 साल लाओ खाना अच्छा बना। That's why Ibn Habib, he was a great scholar of Maliki Maslak. Malikiya Maslak. He mentioned in his poetry, बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने जो फैजुल कदीर में नकल की है जिल्द नंबर छह। قال الرسول صلاة الله تشمله قولا وجدناه عليه الحق والنورا من بات في ليل عاشورا زاسعة يكن بعيشه في الحول مجبورا। ये बात लिखी है इरशाद अल माथूरा في تحقيق حديث التوسع بيوم عاشورا, ये रोट किताब। इरशाद अल माथूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि आशुरा के दिन खाना पकाने पर वुसअत और बरकत होती है, उस हदीस के ऊपर उन्होंने लिखा है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है हमने उसका तजुर्बा देखा, वो बात हक है और हमने अपने घर में वो नूर पाया और पूरा साल अल्लाह पाक ने बरकत अता फरमाई। इससे मालूम होता है कि इस दिन में एक और काम हुआ, एक रोजा है और एक ये काम है, इसके करने से अल्लाह तबारक व ताला घर के अंदर में बे इंतहा बरकत नसीब फरमा देता है। साथ साथ में बहुत सारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि यह रिवायत सही है। अल हदीस अबू हुरैरा वरद मिन तुरुक सही, ये बात नकल की है। वो हजरात जिन्होंने इस हदीस पर आशुरा के दिन में अपनी फैमिली पर वुसअत की है, खाना पकाया और उन्होंने उसका तजरबा एक्सपीरियंस बरकत के एक्सपीरियंस को बयान किया है, वो कौन है? और उसमें से एक हजरत जाबिर है, एक इब्न उयैना है, एक सुफियान सौरी है। सुफियान सौरी अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिवायत के अखीर में नकल फरमाते हैं इन्ना कद जर्रबनाहु फवजदनाहु कज़ालिक, हमने तजर्बा किया और हमने ऐसा ही पाया। ये हदीस के बहुत बड़े मुहद्दिस है सुफियान सौरी, उन्होंने इस बात को नकल किया। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल बर मालिकी ने हजरत जाबिर की रवायत के अखीर में लिखा है, इब्न अब्दुल बर मालिकी बहुत बड़े इमाम है, फरमाते हैं काल जाबिर जर्रबनाहु फवजदनाहु कज़ालिक, हजरत जाबिर साहबी है, हमने इसका तजरबा किया पकाने का, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फाउंड द बरका इन अवर हाउस, एक दिन नहीं पूरे साल बरकत मिले। इसी तरह इमाम शौबा रहिमहुल्लाह हु वाज़ स्कॉलर्स ऑफ हदीस, वो भी फरमाते जर्रबनाहु कज़ालिक, हमने मुजर्रब इस अमल को पाया। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला की रिवायत में सईद इब्न मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर और रावी यहिया इब्न सईद है, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हदीस, वो फरमाते हैं कद जर्रबना फवजदनाहु कदालिक, हमने इसको मुजर्रब पाया। कितने लोग चाहिए? इब्न उयैना इब्न अब्दुल बर मालिकी ने सुफियान बिन उयैना का कौल भी ऐसा ही नकल किया, कद जर्रबनाहु फवजदनाहु कदालिक। बेशतर रिवायतों में उन्होंने देखा उसकी बरकत से साल भर अल्लाह पाक ने तवस्सु की बरकत उनको अता की और उन्होंने उनको महसूस किया। ये छह बड़े बड़े जरीर कदर मुहद्दिस हैं जो अपनी जिंदगी का तजर्बा बयान फरमाते हैं। इससे मालूम होता है कि इस दिन में भी रोजा भी रखें और साथ साथ में कुछ अच्छा खाना अपनी ताकत के मुताबिक बनाएं। जो रवायत अबू हुरैरा की है, इब्न मसूद की है, अबू सईद खुदरी की है, जाबिर रजी अल्लाह तआला हजरत उमर की, इब्न उमर की, इन तमाम रिवायत को नकल फरमाया है। हां, एक बात जरूर है, इसी दिन में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरीरुल कद्र बेटे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शहीद हुए करबला के मैदान में। लोग गलती कहां करते हैं, इस दिन को आशुरा के दिन को लोग बड़ा मानते हैं इसलिए कि उस दिन में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला शहीद हुए। ऐसी बात नहीं है, यह दीन तो बरकत वाला तो पहले से चला आ रहा है, जैसा कि आपके सामने मैंने कई हदीसें रखी है बुखारी और दूसरी किताब की। और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत से पहले इस दिन का रोजा फर्ज था, फिर बाद में रमजान की वजह से वो बाद में फिर सुन्नत बना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसर से रोजा रखते थे और आपने फरमाया था कि मूसा मेरा भाई है, आइंदा साल हम दो रोजा रखेंगे। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला पर चार चांद लग गए, चार नूर और बढ़ गए इस दिन की शहादत की वजह से। वो दिन भी बरकत वाला, दिन की बरकत से हजरत हुसैन तो है ही बरकत वाले, और ज्यादा नूरुन अला नूर बन गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक लंबी दास्तान है, अब इसको बयान करने का वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी बयान करेंगे। बहुत तहकीकी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जंग जिदाल हुई, उसका मकसद जो था वो इस्लाम को इंक्रीज और फैलाने का था। हजरत उस्मान के बाद रजी अल्लाह तआला के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और बात की हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जो जंग हुई, वो जंग क्यों थी? लोगों को इस्लाम पर बाकी रखने के लिए, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैलाने के लिए। और बाद में हुई अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान, चूंकि लोग मुर्तद हो रहे थे अल्लाह के नबी के इंतकाल, तो लोगों को इस्लाम पर साबित कदम रखने के लिए, फिर हजरत अली वगैरह में लोगों ने इस्लाम के अंदर में दाखिली एतबार से एक दूसरे के साथ पार्टी बंडी के साथ जंग शुरू कर दी। उसको दबा करना था, उससे जो जो बीच में जो रोंग लोग थे उनको खत्म करना था, इसलिए जंग लड़ी गई। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तक मशवरे से हक खलीफा मुतय्यन किया गया। और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो बहुत बड़े जलील कद्र साहबी है, उन ताकत की मजबूरी पर उन्होंने लिया। इधर से हजरत हसन रजी अल्लाह तआला 50,000 का लश्कर लेकर गए, उधर हजरत मुआविया रास्ते में हजरत हसन रुक गए और एक कागज और पेन भेजा हजरत माविया पर जी के देखो आप जो शराइत लिखे कंडीशंस मुझे मंजूर है। तो हजरत माविया ने फरमाया नहीं हसन आप जो शराइत लिखे मुझे मंजूर है। तो हजरत हुसैन ने जो जो लिखा उन्होंने कबूल कर लिया और लोगों ने बैत कर ली हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर। हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से पहले बहुत जंग होती रही, बहुत सहाबा शहीद हुए, 1,00,000 से ज्यादा सहाबा शहीद हुए। हजरत अली रजी अल्लाह के जमाने में कितने सहाबा शहीद हुए, जंगे सिफीन हुई फुला और फुला। लेकिन हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में 20 साल उनकी हुकूमत रही, खिलाफत रही, लेकिन बिल्कुल जंग नहीं हुई। जब 10 साल गुजर गए हजरत माविया रजी अल्लाह की खिलाफत के, तो फिर हजरत मुगैरा इब्ने शोबा फरमाते हैं देखो आपके जाने के बाद आप कोई आदमी मुतय्यन कर दो। तो हजरत माविया ने फरमाया कि पहले जो जितने बड़े बड़े साहबा थे वो मुतय्यन करते थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता थे, दे यूज टू लिव इन द कंपनी ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है। बात सही कि हजरत मुगैरा बिन शोबा तो बड़े साहबा थे, उन साहबा में से हैं जिन्होंने हाथ रखा था दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी के हाथ पर, बड़े तजुर्बाकार थे। तो हजरत मुआविया ने उस वक्त अपने बेटे को नामजद कर दिया, अपने बेटे को यजीद को, यजीद बिन मुआविया उसको, और कहा अतराफ में सब इसके हाथ पर बैठ कर लो, यजीद के हाथ पर बैठ कर लो, यानी उसको गवर्नर मान लो। सब ने कर लिया अतराफ में सिवाय 4 के, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के बेटे अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान मना किया, नंबर 2 हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर मना किया, मैं बैत नहीं करूंगा। क्यों? ये कि नई रस्म है ये कि बाप बेटे को बना देता है। हालांकि पिछले साहबा में क्या हुआ, मीटिंग करो, बैठे वो लोग, वो बड़े बड़े लोग जिसको मुतय्यन करें बस उसी को, न के पास ऑन कर, जैसे आज भी होता है सऊदी में देखा, वो बस बेटे को बना दे, फिर उसको बना दे, फिर जिसको मन चाहे। हालांकि एक मीटिंग हो, एक जमात हो, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इंतकाल से पहले फरमाया फुला फुला साहब बैठ जाओ अब अपना खलीफा, तो उन्होंने हजरत उमर को चूज किया। हजरत उमर का इंतकाल का वक्त उन्होंने कहा हजरत उस्मान के फुला फुला लोग बैठ जाओ अब तुम जिसको चूज करो, तो सब ने मिलकर हजरत उस्मान को चूज किया। हजरत उस्मान का जमाना तो अली को चूज किया, भाई सुनना, यहां पर बेटे को चूज किया बगैर मशाविर के, तो 4 ने उसमें अब्दुल्ला इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर अब्दुल्ला इब्ने उमर, नंबर 3 पर है हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी अस्मा उनका बेटा। जुबैर तो बड़े तीर चलाने वाले थे, उनका बेटा भी ऐसा ही था नहीं। और 4 नंबर पर हजरत हुसैन हजरत अली के बेटे। ये 4 बड़े बड़े सहाबा जिनका नाम, सहाबा का नाम है अशरे मुबशरा, अबू बकर सिद्दीक, उमर, जुबैर और हजरत अली, ये अशरे मुबशरा में से जिनको अल्लाह ने नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, इनके 4 बेटे मनाकर हम बैठ नहीं करेंगे, मीटिंग करो, मशवरा करो, जो चूज हो, न कि तुमको बेटा। फिर जब वक्त आया तो अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि देखो झगड़ा होगा, जंग होगी, लोग मर जाएंगे, हम बैठ कर लेते हैं चलो, इसलिए कि जंग से बच जाए, लोग मरने से बच जाए, वरना उधर से भी इधर भी दोनों जगह पर जंग होगी तो बहुत झगड़ा होगा, इधर साहबा है उधर भी मुआविया के बेटा वगैरह, 2 तो हो गए, रह गए 2 अब हजरत जुबैर के बेटे, अस्मा के बेटे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हजरत हुसैन। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, तो दोनों के दोनों चले गए मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा चले गए। एक मुख्तसर है तो बात बड़ी लंबी है, फिर क्या हुआ कैसे कैसे, और बेअदबी की हजरत हुसैन की, तो कैसा अजाब आया, एक लंबी दास्तान है उन लोगों पर कैसे कैसा अजाब आया वो लंब। बस एक आखिरी बात कि मक्का चले गए, तो अब दोनों क्या कहते हैं, हजरत हुसैन भी है और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर भी है। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने कहा मक्का में रहेंगे, नबी सासे मक्का में पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं से हम इस्लाम को फैलाएंगे दुनिया में। तो हजरत हुसैन ने कहा नहीं तुम यार मैं जाता हूं, यजीद ने फसाद फैलाया है क्योंकि ये शराबी, हजरत वालिद साहब के इंतकाल के बाद ये शराबी बन गया। बहुत कुछ उनकी बातें हैं, मैं बयान करूंगा कभी। माविया के बेटे यजीद जो है वो शराबी बन गया, और बल्कि हजरत हुसैन से एक मर्तबा कहा हरम में ये पी लो शराब, और वो तो नशे नमाज की हालत में पीने से अल्लाह ने मना किया है, यूं कहकर हजरत हुसैन ने फरमाया नाउज बिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये जिसने हजरत हुसैन को शहीद करवाया, फिर हजरत हुसैन ने नहीं माना, चले वहां से लश्कर लेकर अपने 70 लोगों को, फैमिली को लेकर वहां करबला, और करबला में जो हुआ 10 मुहर्रम को, तो मैं कह रहा था कि 10 मुहर्रम की जो फजीलत है वो तो चली आई है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन उस दिन में हजरत हुसैन शहीद हुए तो नूरुन अला नूर हो गया। अल्लाह पाक हमें भी ऐसे बरकत वाले दिन नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी बाकी रहेगी तो हम बात करेंगे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला फिर वहां करबला में गए, फिर कैसे शहीद हुए, फिर उनके शहीद करने वालों को अल्लाह ने क्या क्या अजाब दिया, और अल्लाह के नबी ने अपने जमाने में क्या बशारत दी थी, क्या बातें बतलाई थी। एक मरतबा मिट्टी, अल्लाह के रसूल रो रहे थे, हाथ मिट्टी का, ये मिट्टी है, ये जमीन है जहां पर मेरे नवासे हजरत हुसैन को शहीद किया जाएगा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे ये मिट्टी दी है, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ जाओ मेरा नवासा शहीद हो गया है। समझ में आई बात, ये एक लंबी दास्तान है, इंशाअल्लाह फिर कभी बोलेंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दिन के जो मैंने फजाइल बयान किए, खास तौर पर जो जरूरी है, हमें लड़ने तो जाना नहीं है, हमें तो खास अब क्या करना है, उस फजाइल को इसलिए मैंने आज उसी मौजू को लिया है। अल्लाह पाक हमें इस दिन की इबादत की, इस पूरे आशरे की, बल्कि पूरे महीने में मुहर्रम का महीना, रजब का महीना बरकत वाला महीना है, बहुत मोहतरम महीना है, तो उसमें जो नेकी करेंगे अल्लाह उसका सवाब भी ज्यादा देगा, जो गुनाह करेगा उसका अजाब भी ज्यादा होगा। इसलिए इस महीने में अल्लाह ने उसको मुहर्रम कहा, अल्लाह का महीना कहा है, इसमें भी हमें गुनाहों से अपने आप को बचाना चाहिए। जैसे मक्का मुकरमा में गुनाह करे तो गुनाह ज्यादा है, यहां गुनाह करे तो कम है वहां ज्यादा है, इसी तरह और महीने में गुनाह कम, इस बरकत वाले महीने में, मुहर्रम वाले महीने में गुनाह का अजाब भी ज्यादा होगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وبارك وسلم تسليما يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم। اللہ ہمارے گناہوں کو maaf فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو maaf فرما, اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما, اللہ امت کے حال پر رحم فرما, جو قربانیاں تیرے صحابہ کرام نے دیے अल्लाह उनकी बरकत से, रहमत से उम्मत के हाल पर रहम फरमा, बीमारियां परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह दोबारा मुसलमानों में आपस में मोहब्बत मुवद्दत ऐ अल्लाह अता फरमा, एक साथ मस्जिदों में खड़े होकर नमाज पढ़ना और मस्जिदों का एहतराम नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन आने वाली और आई हुई जितनी भी परेशानियां हैं और फितने हैं अल्लाह उससे सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा, सारी उम्मत की हिफाजत फरमा। या अकरमुल अकरमीन ऐ अल्लाह ये मुबारक याम है, इलाहुल आलमीन इसमें हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहम फरमा, हम एक कौम की तोबा तूने कबूल की है अल्लाह, हमारी तोबा भी कबूल फरमा, हमारी आल औलाद की उम्मत की तोबा कबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा, जो बात कही जाती है सुनी जाती है अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें इखलास नसीब फरमा, इखलास नसीब फरमा, और ये बात लोग जहां जहां सुन रहे हैं मिक्सलर के जरिए से या घरों में बैठकर, अल्लाह अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबको कबूल फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह अपने फजल व करम से, रहम व करम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी दुआओं को तू कबूल फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना, आंखों की ठंडक बना, आलिम कुरान बना, अल्लाह अखलाक हसना नसीब फरमा, अखलाक हसना नसीब फरमा। قرت عین بنا. اللہ العالمین آپس میں محبت مودت نصیب فرما، میاں بیویوں کے جھگڑوں کو ختم فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ شوگر، پریشر، بدن کا درد، اتھرائٹس اور قسم کی بیماریاں لگی ہوئی ہے، اللہ العالمین تو معاف فرما کر اللہ ان بیماریوں کو ختم فرما. وصل اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد والی وسلم اجمعین برحمت.